शांति। शिलू दीदी हम सबके बीच में हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दादी जानकी जी कई बार बहुत नशे से कहते हैं, सफेद कपड़ा खीसा खाली और हम हैं सारे विश्व के वाली, सारे विश्व के हम मालिक हैं, बादशाह हैं। तो कौन से बादशाह हैं? बेफिकर बादशाह। तो शिलू दीदी हमें इस विषय पर आज समझाने वाले हैं कि सचमुच बेफिकर बादशाह की स्थिति का हम अनुभव कैसे करें। तो वैसे तो आप परिचित हैं, लेकिन फिर भी आप 1969 में बाबा की सेवाओं में समर्पित हुए। उसके पहले मुंबई में आपको ज्ञान मिला, मुंबई विश्वविद्यालय से आपने बीएससी किया और कुछ स्थानों पर, खासकर बैंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, विदेश में भी, मॉरिशस, अफ्रीका में 2 साल तक सेवा की। और उसके बाद 1976 से आप यहाँ मधुबन में ही रहते हैं और खास राजयोग शिविरों के संचालन के लिए आप निमित्त बने। और तब से लेकर अब तक बहुत कुशलता पूर्वक जितने भी मधुबन में राजयोग शिविर होते हैं आप संभालते आ रहे हैं और अभी तक लाखों आत्माओं ने उन शिविरों से लाभ लिया है। इसके अलावा विदेशियों के लिए ट्रांसलेशन करना, क्योंकि वो जब आते हैं तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है, तो वो सेवा भी आप संभालते रहे हैं। एजुकेशन विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और जब टीवी में अपने प्रोग्राम शुरू हुए ब्रह्मा कुमारीज के, शुरू शुरू में सोनी टीवी में, जी टीवी में, संस्कार चैनल में आप सबने देखा होगा और उसके बाद अब आस्था में फिर धीरे धीरे प्रसिद्ध हुआ और अपना खुद का चैनल अब चलता है, पीस ऑफ माइंड चैनल। तो उसमें भी नियमित रूप से आप टेलीविजन पर आते हैं। तो ऐसे तो आप सभी अच्छी तरह से शिलू दीदी से परिचित हैं और विदेश में भी आपकी हर साल यात्रा होती है, तो सभी 5 महाद्वीपों में आप 70 से भी अधिक देशों में गए हैं और अभी हाल में ही आप चाइना और कोरिया की यात्रा करके आए हैं। तो आज सुबह भी मुरली क्लास में आप थोड़ा अनुभव सुन रहे थे, तो अभी हम सुनेंगे शिलू देवी से।
ओम शांति। बाबा ने इस संगम युग पर हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया है। बाबा कहते हैं पहले तुम बनते हो स्वराज्य अधिकारी, फिर बनते हो विश्व राज्य अधिकारी। जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बने हो तब तक विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं बन सकते। और स्वराज्य अधिकारी हम किसको कहते हैं? पहले अपनी इंद्रियों पर शासन करना, फिर मन बुद्धि संस्कार पर भी शासन करना। जब अपनी इंद्रियों पर और आत्मा के जो मन बुद्धि संस्कार है उन पर जब तक शासन नहीं किया है तब तक विश्व पर भी शासन नहीं कर सकेंगे। पर स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी के बीच में बाबा हमें और बादशाह बना रहे हैं और वो है बेफिक्र बादशाह। जो स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं तो बेफिक्र बादशाह भी बन जाते हैं। और बेफिक्र बादशाह जब हम बनते हैं, स्व पर राज्य करके, अपने इंद्रियों पर राज्य करके, मन बुद्धि संस्कार पर राज्य करके, बेफिक्र बादशाह बन के फिर सबके दिलों को भी हम जीत लेते हैं। तो हर कदम कदम पर जीत ही जीत है हमारे लिए, विजय ही विजय है। पहले इंद्रियों पर विजय, फिर मन बुद्धि संस्कार पर विजय, फिर सबके दिलों पर विजय, फिर सारे विश्व पर विजय। और जब तक सबके दिलों को नहीं जीता, तब तक भी विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि कोई भी बाह्य ताकत से या बाहुबल से आज तक किसी ने दुनिया को जीता नहीं है। बहुत बड़े बड़े शूरवीर आए, सिकंदर जैसे आए, बहुतों ने कोशिश की कि दुनिया को जीते। हिटलर जैसा आया, हथियारों के बल से, युद्ध के बल से दुनिया पर जीत पाने का लक्ष्य रखा, लेकिन जब वो गए तो कैसे गए? हाथ खाली गए। बहुत बुरी दुर्दशा हुई उनकी, जो जो भी ऐसे बन के आए। क्योंकि जब तक सबके दिलों को नहीं जीता है, तब तक दुनिया को नहीं जीत सकते। और सबके दिलों को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना होगा। तो बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी कैसे बनाया? ज्ञान और योग के बल से। जो आज बाबा ने भी कहा, कल भी कहा कि योग बल से तुम्हारे अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या तुम धारण करते हो, बहुत लंबी लिस्ट बाबा ने दी। और उसी में ही स्वराज्य अधिकारी बन जाए तो देखिए, बेफिक्र बादशाह बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान और योग में इतना बल है जो सहज रूप से बेफिक्र बना देता है। कई बार किसी को कोई शारीरिक रोग लगता है तो डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब ये बीमारी है, ये बीमारी, डॉक्टर साहब मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, बड़ी चिंता जताता है। तो डॉक्टर साहब उसको सबसे पहले यही कहते, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। कोई ऐसी बात नहीं है, दवाइयां है, बहुत है, चिंता मत करो। लेकिन कैसे चिंता मत करो ये तो नहीं बताता है डॉक्टर। एक बार एक आया था पेशेंट, डॉक्टर ने उसको कहा कि चिंता मत करो, तो डॉक्टर को ही कहा, डॉक्टर साहब आप बार बार यही कहते चिंता मत करो, किन चिंता मत करो, लेकिन कैसे चिंता नहीं करो, इतने मेरी बेटियां, शादी करनी है, नौकरी है, धंधा है, इतनी इतनी तंगी है, ये सब चिंता कैसे नहीं होगी, फिर ये रोग भी है, ये भी है, ये भी है, समस्याओं की लंबी लिस्ट, और कहते चिंता मत करो। अब बेचारा डॉक्टर को ही पता नहीं कैसे चिंता न करे। कह तो दिया, इतनी सारी जो समस्याएं हैं वो उसकी चिंता न करे, वो थोड़ी डॉक्टर ने कहा, शरीर के रोग की बात कही उसको। पर उसके बाद उस डॉक्टर का चिंतन चला, क्योंकि वो डॉक्टर खुद आया था शिविर में। तो कहता है, मेरा भी बहुत चिंतन चला, मैं कहता तो हूँ लेकिन मुझे भी इतनी चिंताएं हैं। डॉक्टर को कोई कम चिंताएं होती है क्या? कई बार तो हार्ट के विशेषज्ञ होते ना, वही हार्ट अटैक से मर जाते हैं, दूसरों का इलाज हार्ट का करते करते खुद ही मर जाते हैं। तो इसीलिए केवल चिंता मत करो ये कहने से चिंता मिटती नहीं है, परंतु ज्ञान और योग में वो शक्ति है जिससे हमारी चिंताएं मिट सकती और हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो जो बाबा ने ज्ञान दिया है, योग सिखाया है, उसके आधार से कैसे सब चिंताएं हमारी मिट जाती है। सबसे बड़ा डर, डर और चिंता ये दोनों भाई बहन हैं। चिंता माना साथ साथ डर भी होता है ना, है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो जहाँ चिंता है वहां डर है, जहाँ डर है वहां चिंता है, ये दोनों साथ साथ है। वैसे तो अगर देखा जाए तो कई बातों का डर है, कई बातों की चिंता है, लंबी लिस्ट है उनकी। लेकिन सर्वोपरि कौन सा डर रखेंगे, वो है मृत्यु का डर, मृत्यु की चिंता है, कहीं मर न जाऊं मर न जाऊं। तभी तो डॉक्टर को कहते हैं ना ये तो डॉक्टर का चिंता नहीं करो, माना डरो मत कि तुम मर जाओगे, दवाइयां है ठीक हो सकते हो। तो सबसे बड़ा डर तो बाबा ने हमारा पहले दिन ही निकाल दिया। क्या निकाल दिया, कैसे निकाल दिया, जो सबसे बड़ा मृत्यु का डर, तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, अगर आत्मा शरीर छोड़ भी दे तो भी क्या परवाह, है कोई चिंता, अगर अभी अभी कोई शरीर छोड़ दे तो डर लगेगा, हाय मर रहा हूं कि बाबा की गोद में चला जाऊंगा। सहज मक्खन से बाल होगा या दुखी होकर के दे त्यागेंगे, क्या होगा, मक्खन से बाल, क्योंकि हमें खुशी है। और ही बाबा कहते तुम तो पुरुषार्थ उसके लिए कर रहे हो, जीते जी मरने के लिए, है ना, जीते जी मरना है ना, दे अभिमान छोड़ना तो ये जीते जी मरना हो गया। वैसे देखो तो रोज रात को मरते ही है, जब नींद आती है तो क्या होता है, शरीर से न्यारे हो गए पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। तो टेम्पररी तो मरना ही होता है ना, फिर सवेरे देखो फिर जाग गए, रात को मर गए सवेरे जाग गए जिंदा हो गए, तो वो तो रोज ही होता है। और ही अगर नींद नहीं आती तो चिंता हो जाती, क्यों नहीं नींद आ रही है, नींद आए तो अच्छा है फ्रेश हो जाएंगे, पर नींद भी तो एक मरना ही है ना। तो बाबा ने हमें सबसे पहले इस चिंता से मुक्त कर दिया, तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा, तुम कभी नहीं मरती हो, कोई बात नहीं, नया चोला मिलेगा, खुशी है। और बाबा ने यहां तक कह दिया कि सबसे अच्छी मौत कौन सी होती, हार्ट फेल एक सेकेंड में पता भी नहीं चला। और उस हार्ट फेल में भी सबसे अच्छी मौत होती है कब, रात को सो जाओ सवेरे उठो ही नहीं अरे क्या हुआ, सवेरे उठे ही नहीं, खत्म, क्या हुआ। हमारी संतरी दादी थी, संतरी दादी बहुत पावरफुल दादी थी, बहुत बड़ी ट्रांस मैसेंजर थी, बाबा के साथ साथ रहती थी, बाबा को कुछ भी संदेश देना होता था ना अव्यक्त बाप दादा को, तो बाबा उनको कहते थे जाओ बच्ची ये बाप दादा को ये संदेश पहुंचाओ, और बाबा से जवाब लेकर आना। लेकिन बच्ची गो सुन कम सुन, ये गो सुन कम सुन जो है ना, ये बाबा ने ये शब्द निकाला। तो गो सुन कम सुन माना क्या, बाबा उनको दृष्टि देते थे, हाँ बस दृष्टि दी 5 सेकंड में उड़ गई, हाँ वतन में पहुंच गई, और फिर देखो तो 1 मिनट में वापस भी आ गई। तो बाबा ने जो संदेश भेजा, जो प्रश्न था, जो भी बाबा को कुछ कहना होगा अव्यक्त बाप दादा से, वो उनको कहते थे, फिर वो उसका जवाब लेकर आती थी। तो उनकी विशेषता देखी, जब देखो कोई भी ऐसी बात होगी फटाफट चली जाती थी, रोज सवेरे 3 बजे उठती थी, और बहुत पावरफुल योगी आत्मा थी। और जब उसने शरीर छोड़ा तो देखो कैसे, रात को हमारे साथ बात करे इंद्रप्रस्थ में, हम लोग 10, 10:30, 11 तक बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रही थी, जैसे कि कोई नहीं सोचेगा कुछ है इनको, कोई कुछ भी नहीं था। सवेरे 3 बजे उठी है और जो बहन उनको संभालती थी उसने देखा, उठी वही बात सुन में, और फिर थोड़ा जैसे लेटी, और फिर चलो 4 बजे तो उठी जाती थी, 3 बजे भी उठती, फिर 4 बजे तो मानो उठी गई, 4 बजे उठी नहीं, 5 बजे उठी नहीं, तो बहन ने सोचा होगा भाई चलो थकी हुई होगी, ठीक है हम जगाते नहीं है, जो उनके साथ सोती थी जगाते नहीं है। 5-6 बज गया अभी तक नहीं उठी, तो जब हिलाया तो है ही नहीं, है ही नहीं। अरे वो तो डर गई बेचारी क्योंकि 3 बजे तो उठी थी, किस समय शरीर छोड़ा पता ही नहीं चला, बस 1 सेकंड में उड़ गई होगी, उसको भी नहीं पता चला होगा कैसे उड़ गई। तो बाबा कहते ये सबसे श्रेष्ठ मौत, 1 सेकंड में कितना अच्छी तरह से उठी जैसे कुछ था ही नहीं। और फिर देखो हमारे एक बहुत विदेश के भाई थे, विदेश का एक भाई एंथनी भाई, वो जैसे लंदन का है, यूरोप में उसने बहुत सेवाएं की, वो ब्राजील गया था, साउथ अमेरिका गया था, इतनी सेवाएं की, इतने क्लासेस कराए मानो सुबह से रात तक। और सवेरे जिस दिन उसने शरीर छोड़ा, सवेरे नाश्ता सब कुछ किया, योग कराया, क्लास कराया, मुरली सब कुछ होने के बाद नाश्ता जैसे किया, नाश्ता पूरा हुआ और बात ही कर रहा, 1 सेकंड उड़ गई आत्मा, शरीर छोड़ दिया, बस 1 सेकंड। सब हैरान वहां बैठे हैं सारे भाई बहने उनके सामने, पता भी नहीं चला। बाबा ने बहुत अच्छा संदेश दिया उस आत्मा के लिए कि कैसे इसने, उसने उसके कुछ दिन पहले 1 महीने से एक किताब लिखनी शुरू की, किताब लिखता था और भाषण भी बहुत, उसने कई किताबें लिखी अपने इंगे विदेश के भाई बहनों में से, उनकी एक विशेषता थी किताबें बहुत लिखता था, लेखक भी अच्छा था, भाषण भी बहुत अच्छा करता, टीचर था, बाबा दादी उनको सब जगह भेजती थी लेक्चर्स देने के लिए, क्लासेस कराने के लिए, ब्राह्मणों की पालना करने के लिए। तो वो किताब लिख रहा था हाउ टू स्पेशलिटीज ऑफ एन एंजल, फरिश्ता की विशेषता क्या है और कैसे हमें फरिश्ता बनना है। और उसका लगभग वो किताब पूरा हो चुका था, बाकी थोड़ा सा था इनके, जब रोज उसको नई नई विचार आते थे फरिश्ता कैसे बनना है, फरिश्ता कैसे बनना है, और उस पर किताब लिखी। और बस उस दिन उसने सवेरे मुरली के बाद इसी पर ही क्लास कराया था, फरिश्ता बनना है कैसे, 1 सेकंड में शरीरी हो जाना है, 1 सेकंड में न्यारा हो जाना है, फर्श से कोई रिश्ता नहीं, जो भी बताया। और सचमुच नाश्ता किया और बैठा ही था, बस बैठा था जैसे निश्चिंत होकर के भी नाश्ता कर चुके हैं, अभी उसके बाद दूसरा क्लास होना था, जैसे कुछ है ही नहीं, और 1 सेकंड में आत्मा उड़ गई। सब इतना आश्चर्य खाए और बाबा ने भी संदेश दिया कि ये तो फरिश्ता बन ही चुका था, फरिश्ते का किताब लिखते लिखते जैसे फरिश्ता बन ही चुका था, परंतु बाबा को इसकी ज्यादा जरूरत थी। संगम पर तो ब्राह्मणों को तो इसकी जरूरत थी, लेकिन बाबा को इसकी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए बाबा ने उसको बुला लिया। बताओ 1 सेकंड में बुला लिया बाबा को भी कितनी देर लगती है बुलाने में, और उस बच्चे को भी जाने में कितनी देर लगी 1 सेकंड में, ब्रह्मा बाबा भी 1 सेकंड में अव्यक्त हो गए है ना। सारा दिन बाबा ने कितनी सेवा की, आपको मोहन भाई ने बताया, सारा बताया ना, और कैसे 1 सेकंड मुश्किल से लगा, बस बाबा बैठे हैं एकदम अशरीरी हो करके, और दादी जी सामने गए हैं आंखें बंद करके, और बाबा ने, दादी ने बाबा को कहा बाबा बाबा, बाबा ने आंखें नहीं खोली, मतलब शांत बैठे थे, न्यारे हो गए थे, और एकदम दादी ने बाबा का हाथ पकड़ा और बाबा ने आंखें खोली और बाबा ने दृष्टि दी और हाथ दिया, और जैसे दादी ने हाथ पकड़ा तो बस हाथ और दृष्टि इनसे जैसे सारी शक्तियां दादी जी को विल कर दी। 1 सेकंड की बात थी, दादी को तो समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, कहा अभी अब तो बाबा बैठे थे, अभी अभी हाथ ऐसे ऐसे मानो ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि बाबा तो हाथ पकड़ के ऐसे बैठे थे बाबा जैसे हम बैठे हैं। और दादी जी ने बाबा के हाथ पकड़े और एकदम सिर झुक गया, माना आत्मा चली गई। तो आश्चर्य का है, दादी को कभी उसे सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे बाबा चले गए, लेकिन ये है 1 सेकंड में अशरीरी स्थिति जो हम बना सकते हैं योग के द्वारा, जिसके द्वारा हम मृत्यु पर जीत पा लेते हैं। अकाले मृत्यु तो क्या बाबा कहते हैं कि सतयुग में तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ सकता है काल, इसीलिए अमर गाए गए हैं। देवताएं अमर क्यों गाई गई हैं? ऐसे नहीं कि देह नहीं त्यागते होंगे, देह तो त्यागते होंगे, 150 साल की आयु के बाद भी देह तो त्यागते होंगे ना, लेकिन अमर क्यों गाए गए हैं? क्योंकि देह त्याग भी उनके हाथ में, ऐसे कुछ कुछ वर्णन है शास्त्रों में, जैसे भीष्म पितामह का वर्णन है इच्छा मृत्यु। तो ये सतयुग में तो सारी देवताएं इच्छा मृत्यु वाले ही होंगे अपनी, भाई अब ये काया पुरानी हुई है, अब नई चमड़ी लेनी है, नया बच्चा बनना है, तो खुशी खुशी आत्मा ने एक चोला उतारा, नया चोला धारण किया। यहाँ तो कितना डर है, कितनी चिंता है, हाय कहीं मर न जाऊं। कई लोगों के तो सारा दिन मुंह में ही ये शब्द है, मर गई, हाय मर गई, है ना? एक कहीं में गई थी तो वह सारा एक दिन मर गई। तो हमने उसको कहा, तुम ऐसे कहती हो मर गई, मरना चाहती हो क्या? कहते नहीं, अब मरना चाहती भी नहीं हो, फिर मर गई क्यों कहती हो? तो फिर उसको समझा, ऐसे शब्द मुख से कहना भी नहीं चाहिए। जो चीज आप चाहती नहीं हो वो मुख से कहती क्यों हो? किसी दूसरे के लिए भी अगर कह दिया जा मर जा, पर सचमुच क्या चाहते क्यों मर जाए, तो फिर मुख से क्यों ऐसे शब्द निकालते हैं, संकल्प भी क्यों करते हैं जो चीज चाहते नहीं? लेकिन हाँ, योग में हम अशरीरी बन जाए, ये बहुत ऊंचा शब्द है, ये बहुत श्रेष्ठ शब्द है। मृत्यु ये दुखदायी शब्द है, इसलिए सतयुग में ये मृत्यु शब्द है ही नहीं। स्व इच्छा देह त्याग, जिसको बाबा कहते सर्प का मिसाल, हमने देखा है कैसे सांप अपनी चमड़ी उतारता है। किसने मुझे उसकी वीडियो भेजी थी, बाबा की मुरली में आता है ना, तो उसकी वीडियो भेजी थी, यूट्यूब में भेजा था, आजकल तो कंप्यूटर में तो सब कुछ होता है। तो वो दिखाया कैसे वो सांप धीरे 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 ऐसे 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 करते 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 उसकी चमड़ी पीछे उतरती जाती है, वो आगे निकलता जाता है, उसकी चमड़ी पीछे उतरती जाती है और एकदम नया हो गया। मरता नहीं है पर वो पुरानी चमड़ी उतार देता है और उसको नई चमड़ी एकदम चमक गया। थोड़ी मेहनत लगी होगी, कोई इधर ऐसे 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 करता करता आगे गया और उसकी चमड़ी उतरती गई और अंदर से नई चमड़ी है उसको। वो तो खुश हो गया होगा ना कि हमारी पुरानी चमड़ी उतर गई। जैसे कोई मैले कपड़े हो, पुराने कपड़े हो, उसको उतारने हैं और सामने नए कपड़े देख रहा है, तो उसको दुख होगा या खुशी होगी? खुशी होगी। पर दुनिया में तो कितना डर है मृत्यु का, कितना रोते हैं लोग, क्या नहीं रोते। हम तो कहते हैं जो रोते हैं ना, कोई देह छोड़ता है, रोते भी है ना, समझो ये उनके लिए नहीं रोते, अपने लिए रोते हैं, अपना स्वार्थ है। वो आत्मा गई तो गई, वो तो पता ही नहीं कहाँ गई, लेकिन अपने लिए कैसे रोते, हाय अब मेरा क्या होगा, समझा? हाय मेरा क्या होगा, ये क्या है? हाँ? जी मनो अपने लिए स्वार्थ है ना, हाय उसका क्या होगा ये थोड़ी बोलते हैं। हाय मेरा क्या होगा जी, अपना सुख उसको नहीं मिलेगा जो उससे मिला था। अच्छा चलो, फिर चाहते कि उसको उसको सुख मिले वो आत्मा, चलो उसका भी सुख चाहते हैं और समझते कि उसको शांति मिले, तो उसको भी शांति तब मिलेगी जब आप शांति में रहेंगे। आप अगर अशांत होंगे तो उनको शांति दे सकेंगे? क्योंकि आपके वाइब्रेशंस उस तक पहुंचेंगे, वो आत्मा जहां भी गई। तो सच्चा प्यार ये नहीं है कि हम रोएं तो सही, दिखाएं तो सही भाई यहाँ प्यार था, लेकिन सच्चा प्यार है कि वो आत्मा जहां भी गई उसको वो शांति में रहे, तो उसके लिए मैं उनको शांति के वाइब्रेशंस दूं। पर मेरा क्या होगा, ये तो स्वार्थ तो बहुत बुरी चीज है ना, परंतु ये सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो प्यार नहीं है, ये अज्ञान है। सच्चा प्यार माना किससे प्यार है, शरीर से प्यार या आत्मा से प्यार? शरीर से प्यार है तो रख दो, उसके शरीर को रख सकेंगे। आत्मा से प्यार है तो आत्मा से प्यार माना वो आत्मा जहां भी जाए वो सुखी रहे, वो सेवा करे, सबका कल्याण करे, अपना स्वार्थ नहीं है। तो कहने का भाव है कि सबसे बड़ी चिंता, बड़ा डर वो मृत्यु का होता है, और आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया जिससे सचमुच हम रोज अपने को उस अशरीरी स्थिति में अनुभव करें। मैं आपको बताऊं, अपना अनुभव बताऊं, हमारा भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। आज ही कमलेश बहन वो याद करा रही थी, राधा बहन का याद, सवेरे ही बात कर रहे थे हम लोग, तो इनको भी बहुत चोटें आई। कैसे, ये आपको मालूम है इनका अनुभव? पता है ना सबको, बहुत बड़ा अनुभव। नहीं मालूम, देखो इनको पता ही नहीं आपका अनुभव। हाँ, कभी ऐसे सुना, कितना बहुत बहुत सुनाया मुझे आज, क्योंकि हम इनको गए थे देखने के लिए हॉस्पिटल में, पर राधा बहन ने तो उसी समय शरीर छोड़ा था। वो भी बहुत भाग्यशाली थी जो एक सेकंड, उसको पता भी नहीं चला होगा वो आत्मा कैसे उड़ गई, पता भी, और बहुत सेवा करके गई। क्या शांतिवन में उसने इतनी उस समय रिकॉर्डिंग कराई, एग्जीबिशन वो राजस्थानी भाषा में रिकॉर्डिंग कराई, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करके, इतनी सेवा करके वो पूरा किया, और खाना भी नहीं खाया, सारा बता रही थी। यानी मुझे याद तो था, लेकिन वो फिर याद आया कि और कैसे, बस सेवा सेवा सेवा, उनको और कुछ बुद्धि में था ही नहीं। और फिर एक हुआ तो एक सेकंड में हो गया, तो ये भी उसमें थी। तो मुझे अपना भी याद आया, मेरा भी एक एक्सीडेंट हुआ था, हमारी सविता बहन का भी एक्सीडेंट हुआ था। सविता बहन ये तो कोमा में चली गई थी, कैसे बाबा ने इसको बचाया, कभी अनुभव सुना ना? जी हाँ, तो उस समय मैं अपना अनुभव सुनाऊं जो मेरा है। बहुत मना बड़ा एक्सीडेंट क्या हुआ, तो एक व्यक्ति सामने आया, वो ये लकड़ी लेते हैं, जंगल काट, जंगल की लकड़ी काट करके सिर पर ले जाते हैं ना ये गांव वाले लोग, तो वो लेके जा रहा था, और हमारी गाड़ी जा रही थी, हम पालनपुर से आबू रोड जा रहे थे, शाम का समय था, एकदम अंधेरा तो नहीं हो गया था, उजाला था, शाम के 6:30 के लगभग बजे थे, हम वापस जा रहे थे मधुबन। तो वो अचानक आ गया, और उसके सिर पर वो लकड़ी, ये लकड़ी कटी हुई उनका बंडल था, तो अचानक आए, वो ड्राइवर ने देखा ही नहीं, और उसने क्या किया, वो जोर से ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक लगी नहीं लगी उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, तो सोचा कि नहीं लग रही, तो उसने टर्न करने की कोशिश की ताकि वो टर्न करे। अब कहाँ टर्न करेगा, वहां तो खाई भी थी, वहां तो पिलर भी था, वहां तो बहुत कुछ था साइड में, ऐसे कैसे टर्न करेगा, पर कर लिया उसने। परंतु फिर भी उस व्यक्ति को लगा, वो पैर को लगा, और वो व्यक्ति गिर गया, आगे गिरा, उसके सिर को भी लगा, पैर को भी लगा, और फिर क्या हुआ, वो जो सिर पर जो लकड़ी का जो बंडल था ना लकड़ियों का, वो उछल करके हमारी कार के ऊपर लगा, और वो कार जो आगे की थी ना, वो चूर 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 हो गई, एकदम वो शीशा उसका चूर 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 हो गया। अब हम लोग अंदर थे, और एकदम से इसने वो स्टीयरिंग व्हील घुमाई, तो क्या एक्सल टूट गया, पता नहीं था, जोर से आवाज, अब उसका आवाज, इसका किसका था समझ में नहीं आया, एक सेकंड की तो कई तो खेल होता है। अब उसके उस समय खाई भी थी, एक पिलर भी था, पिलर को भी गाड़ी लग सकती थी, और या तो खाई में भी गिर सकती थी। और उसी समय मुझे याद है, मैं साइड में बैठी थी पीछे, और हमारे साथ दो बहनें पीछे बैठी थी, जो बीच वाली थी वो तो पतली थी, जो साइड वाली थी वो तो मोटी थी। तो क्या हुआ कि अब जैसे हुआ, तो मैं उसी समय, मुझे तो ऐसे महसूस हुआ कि बस मैं जा रही हूँ, उड़ रही हूँ। तो मैंने उस समय जैसे बाबा को इतना ही कहा, बाबा मैं आ रही हूँ। आ रही, बिल्कुल अशरीरी हो गई, एकदम अशरीरी हो गई, एकदम जैसे कि क्या हुआ कुछ पता नहीं, और दिल की धड़कन भी ऐसे महसूस हो कि जैसे रुक गई एकदम। पर मैंने कहा, बाबा आ रही, बस यही मेरा लास्ट संकल्प था, और एकदम अशरीरी हो गई। और फिर क्या हुआ, वास्तव में न वो पिलर से टकराई गाड़ी, और न वो खाई में गिरी, वहां पर झाड़ियां थी, तो क्या वो सारी गाड़ी जो थी वो झाड़ियों में जाकर के टेढ़ी हो गई, उसका व्हील निकल आया, उसका आगे का वो शीशा सब टूट गया, मतलब जो कुछ था, और हम और वो जो छोटी थी वो तो नीचे गिर गई वो गाड़ी में बस पीछे की सीट के, और जो मोटी थी वो मेरे ऊपर गई। तो उस समय जैसे होश आया कि अभी जिंदा है। तो फिर क्या हुआ, तो जैसे आंख खोली तो हमने देखा, अरे अभी तो जिंदा है। लेकिन एक दो के ऊपर बस फिर तो ओ, परंतु वो घड़ियां अशरीरी सच्ची कैसे होते हैं वो अनुभव मैंने उस सेकंड में बहुत ही सुंदर किया। और तुझे तैयार, बाबा हम आ रहे, बस एक ही यही संकल्प था। ये नहीं हाय हाय हुआ, वो जो चिल्लाते ना लोग कई ऐसे होते, बिल्कुल कुछ नहीं। अब ये है बहुत काल का अभ्यास, जो बाबा कहते योग में तुम अशरीरी बन जाते हो, अंत के समय केवल एक सेकंड का ही आपकी परीक्षा का समय है, और कोई आत्मा याद ना आए, कोई देहधारी याद ना आए, कुछ भी याद ना आए, बस बाबा के सिवा और कुछ याद ना आए, ये अंत की एक सेकंड की परीक्षा होगी। और उसमें अगर पास हुए तो तब 108 की माला में आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। जो बाबा ने ये तीन शब्द अभी कितने पिछले सीजन की मुरलियों में बाबा कहते हैं, जो कुछ होगा अचानक होगा, अचानक होगा, इसीलिए क्या करो, क्या रहो, एवर रेडी रहो, अचानक होगा, एवर रेडी रहो, और बहुत काल का अभ्यास हो। ये तीन बातें, ये मूल अभ्यास है हमारा, ये मूल पुरुषार्थ है हमारा। मम्मा हमेशा ये कहती थी, आज भी अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे कौन याद आएगा, मेरा क्या होगा अंतिम संकल्प, ये पहले से ही अपना अभ्यास कर लो। खाली कहो ही नहीं, हाय मर गई या मर गई या मर जाऊं मर जाऊं, ये बहुत गलत, ये संस्कार अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, खुशी खुशी, अभी तो मैं देखती हूँ कितनी माताएं जीते जी मरने का भोग लगाती हैं, जीते जी मरना है, मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे बच्चे बच्चे कुछ करेंगे या नहीं, पता नहीं, हम ही लगा दे ब्राह्मणों को खिला दे तो बस हमारा अभी पुण्य बन जाए, जो कुछ है पता नहीं कल किसने देखा। तो सचमुच ये अपनी अंदर की धारणाएं, इससे भय खत्म हो जाता है, अमृतत्व का अनुभव होता है जो हम भगवान से मांगते हैं भक्ति मार्ग में, मृत्यु में अमृतम गमय, तो ये अमृतत्व का अनुभव हमें होता है आत्मा का ज्ञान। और फिर बाबा परमात्मा का ज्ञान, हमने परमात्मा को पहचान लिया है तो और किस बात की चिंता है, पाना था जो पा लिया, अभी और क्या चाहिए, चिंता थी पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने की, वो मिल गया तो और कोई चिंता नहीं, किस और इससे और बड़ी चिंता क्या होगी, हाँ भगवान मिले भगवान मिले। आज बाबा ने कहा ना, बुलाया उनको लेकिन वो आकर के क्या करेगा ये तो पता ही नहीं था, पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, महाकालेश्वर की पूजा करते हैं तो महाकाल आएगा तो क्या करेगा, महाकालेश्वर की पूजा माना महाकाल, तो शिव को महाकाल कहते हैं तो महाकाल को बुलाना माना वो तो सबको ले जाएगा, किसी को भी छोड़ेगा नहीं, सबको मुक्ति दिलानी है ना उनको, तो यहाँ थोड़ी किसी को बिठाना है, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलानी है, इस कलयुग की दुनिया में तो रहना नहीं है। तो इसीलिए पतित पावन को बुलाना माना पतित पावन आकर के पावन बनाएगा ना, तो ये थोड़ी कहेंगे कि अरे पावन थोड़ी मुझे बनना है तो फिर बुलाया क्यों, पतित पावन आओ माना पतितों को पावन बनाओ, या मुक्ति दो तो घर लेने आएगा, ले जाने लिए आएगा ना। अरे एक एक ड्रामा बनाते हैं हम लोग, स्वर्ग में एक सीट खाली है तो नारद मुनि आता है नरक के मनुष्यों से पूछने के लिए, स्वर्ग में एक सीट खाली है कौन है तैयार चलने को, तो पहले तो बहुत कहते थे लेकिन जब नारद पहुंचा तो कोई तैयार नहीं हुआ, एक बूढ़ी औरत भी तैयार नहीं हुई, जो पहले कहती थी कि हाँ बस भगवान उठा लो, ये तो शरीर नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, कुछ ये सब भगवान उठा लो, और सचमुच जब कभी स्वर्ग में सीट खाली है चलो, नहीं 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 मेरे पोतरे के पोतरे का शादी क्या ब्याह तो हो जाए पहले, उसका तो मैं बहू का मुंह तो देखूं तो फिर चलूंगी, अभी नहीं। तो देखो कलयुगी दुनिया में ऐसे, परंतु फिर जब वो ढूंढता ढूंढता माउंट आबू आ गया, तो माउंट आबू में देखा तो सारे तैयार बैठे, एक सीट तो क्या, कितनी सीट चाहिए। ऐसे एक ड्रामा बनाया था। तो बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह बनना माना हर समय तैयार, क्या होगा अच्छा ही होगा। त्रिकालदर्शी बनाया बाबा ने हमको। त्रिकालदर्शी का मतलब है, एक बार बाबा ने किसकी परीक्षा ली, मुरली में साकार बाबा ने, मुरली के समय बाबा ने प्रश्न किया कि आप सभी त्रिकालदर्शी हो, तो सब ने कहा हाँ है हम त्रिकालदर्शी। तो बाबा ने एक से पूछा, अच्छा त्रिकालदर्शी हो तो बताओ कल क्या होगा, कल क्या हुआ वो तो याद आ जाएगा, कल ये खाया, ये पिया, ये पहना, यहाँ गए या जो भी, कल क्या होगा वो बताओ, त्रिकालदर्शी हो ना। तो बेचारा वो मुझ गया। कल क्या होगा कैसे बताएं, तो जवाब नहीं दिया। बाबा ने दो तीन से पूछा तो जवाब नहीं दिया। तो बाबा ने कहा कि कैसे त्रिकालदर्शी हो फिर, पर एक आत्मा थी। तो उससे जब पूछा तो उसने कहा बाबा जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। बाबा ने कहा राइट, राइट, त्रिकालदर्शी माना ये नहीं कल क्या होने वाला है वो सब अभी कुछ सब पता चल जाए, वो तो जो है वो ड्रामा है ही है, परंतु जो होगा वो अच्छा ही होगा, इस ड्रामा में कुछ बुरा है ही नहीं, सब कुछ कल्याणकारी है। भले उस समय लगता है ये अकल्याण है, लेकिन वो कल्याणकारी ही है। जैसे हम लोग कोई फिल्म देखते हैं ना, तो उसमें कहा ये क्या कर रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे वो आगे देखते जाते तो पता चलता है कि ये किस लिए किया, इसमें कितना कल्याण समाया हुआ था, उस समय नहीं पता चलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो जो भी होगा वो कल्याणकारी होगा। अगर ये संकल्प बुद्धि में आ जाए तो फिक्र होगा, चिंता होगी, कोई नहीं चिंता होगी, चिंता की कोई मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि कल्याणकारी होगा। एक तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, चिंता भी क्यों होती है, फिक्र क्यों होता है, हाई क्या होगा, तो बाबा ने कह दिया हाई क्या होगा ये मत कहो, जो होगा वो कलप पहले अनुसार ही होगा। आज भी बाबा ने रोज मुरली में सुना रहे, बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, फिर बाबा तो कहेंगे ठीक है जो भी होता है ड्रामा अनुसार ही होता है, पर फिर बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। अब कई लोग इसका उल्टा उठाते हैं, जब बाबा कहते हैं कि सब कुछ निश्चित है तो उल्टा उठाते हैं, सब निश्चित है फिर पुरुषार्थ क्यों करें, पुरुषार्थ क्यों करें, सब निश्चित है। लेकिन फिर बाबा ने इस पर भी समझाया कि दोनों का साथ साथ संबंध है, बीज के बिना झाड़ नहीं, झाड़ के बिना बीज नहीं। ये पूछा जाता है प्रश्न, हम लोग पूछते हैं पहले क्या आया, बीज आया या झाड़ आया, बीज कहाँ से आया, तो पहले क्या आया। वही ना, अंडा पहले या मुर्गी पहले, दोनों ही चाहिए ना, बिना दोनों के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ सकेंगे। इसीलिए अगर ड्रामा कह करके बस जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, तो आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध भी कहाँ मिलेगी। इसलिए पुरुषार्थ का भी महत्व है, प्रारब्ध का भी महत्व, दोनों साथ साथ है, दोनों को अलग मत करो। पुरुषार्थ को आगे रखे या प्रारब्ध को आगे रखे, दोनों को आगे है, भाग्य अनुसार भी है। देखो भाग्य अनुसार आप यहाँ आए, पर पुरुषार्थ किया तब तो आए ना, बिन नहीं करते होते तो भाग्य अनुसार आए, यहाँ भाग्य था इसीलिए आए, पर पुरुषार्थ भी तो किया ना। कितनी बातें आपके बीच में आई होगी, आपने कहा नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो अभी कुछ नहीं, अभी हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है, आई होगी कि नहीं। और जिन्होंने सोचा होगा अब कैसे जाएं, चलो बैठ गए, पुरुषार्थ नहीं किया, बैठ गए। टिकट भी आई थी तो भी कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि कैसे जाएं, कैसे जाएं। और जिन्होंने चिंता नहीं की तो क्या उनका काम रुक थोड़ी गया, सब ठीक हो जाता है। कुछ भी गलत नहीं ठीक होता, ऐसी बात ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने चाहे आत्मा का ज्ञान दिया है, परमात्मा का ज्ञान दिया है, बाबा मेरे साथ है, काय की चिंता। बताए ना, वो बहन जाज बताती सारा दिन बाबा बाबा करते, फिर कोई उनको कहते अरे तुम अकेली रहती हो, देखो अकेली ना आजकल बड़ा खतरा है, कोई कोई भी आ जाए, कुछ हो जाए। तो कहती नहीं, बाबा मेरे साथ है, मुझे काय की, अगर होए कुछ भी बाबा मेरा रक्षक है। उसको जरा भी फिक्र नहीं। लोग उसको बहुत डराते हैं, लोग डराते हैं, तो अकेली मत रहो, किसको रखो। अब कहते हो जिसको रखूंगी वो कुछ कर ले, तो पता नहीं किसको रखें, वही लूट के ले जाए, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। तो इसीलिए हर कदम कदम पर इंसान को डर घेर सकता है, लेकिन बाबा कहते बस बाबा को साथ ही रखो बस। और बाबा तो आपका है ही परम रक्षक, और बाबा की याद ही सेफ्टी का साधन है। वो आपके लिए कवच बन जाएगा, आपके लिए ढाल बन जाएगा, आपकी रक्षा करेगा। ज्ञान और योग ये पंख है, आपको उड़ा देगा। देखो पंछी अपनी रक्षा कैसे करता है, पंछी रक्षा कैसे करता है, कुछ भी उसे बात होती ना तो एकदम उड़ जाता है। पंख है उसको, जो नीचे जमीन पर है, जो जानवर है, कुछ भी आएगा पक्षी को पकड़ने की कोशिश पर, वो उड़ जाएगा तो वो जानवर थोड़ी उड़ेगा, वो तो उड़ गया पंछी। कछुआ भी अपनी रक्षा कैसे करता है, अपने अंगों को अंदर ले लेता है, समेट लेता है, उसकी रक्षा है ये। और बड़े बड़े जो कछुए होते हैं ना, उनके ऊपर अगर ट्रक भी चला जाए तो ही मरते नहीं है, क्योंकि वो इतना सॉलिड होता है, वो जो उनके ऊपर जो क्या कहते हैं कवच जो होता है, इतना पक्का होता है। और उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है। सबसे ज्यादा जितने भी जीव प्राणी है, इंसान सहित, सबसे जास्ती आयु अगर है तो कछुए की आयु है, क्योंकि उनको इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उनकी मेटाबॉलिज्म इस प्रकार है कि वो चलता है फिर रुकता है, चलता है रुकता है, तो उसका हार्ट भी इसी प्रकार ही चलता है। तो वो तो 500 साल भी जीत सकता है, 500 साल। मैंने देखा है कछुआ, वियतनाम गई थी, वियतनाम में या पता नहीं किसी ईस्ट के किसी कंट्री में गई थी, तो वहां पर वो दिखाया उनका, उसकी तो पूजा करते हैं लोग, क्योंकि 500 साल का वो कछुआ है, 500 साल कोई जिया अभी तक 500 साल, लेकिन वो कछुआ जिंदा है, छोटे से तालाब में है, और धीरे 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 उसको, उसके लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको देखने ही जाते हैं उस कछुए को जैसे देवताओं का दर्शन करते हैं ना, वैसे कछुए का दर्शन करते हैं। तो देवताओं का भी क्यों दर्शन है, क्योंकि वो भी तो अमर है ना। तो कहने का भाव है कि एक तो आत्मा का निश्चय, फिर बाबा में निश्चय। किसका मैंने हाथ पकड़ा है, किसका हाथ पकड़ा है, या किसने मेरा हाथ पकड़ा है। देखो दो बातें हैं, किसका हाथ मैंने पकड़ा है और किसने मेरा हाथ पकड़ा है। ये दोनों अलग अलग है या एक ही बात है? अलग अलग है। इस पर एक किसी ने हमको इंटरनेट में कहीं हमने पढ़ा था कि एक बाप और बेटा जा रहे हैं, तो बाप ने कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ो, कहीं क्योंकि कहीं फिसलन ना हो जाए, मेरा हाथ पकड़ो, बेटा मेरा हाथ पकड़ो। तो बेटे ने कहा नहीं डैडी, आप मेरा हाथ पकड़ो। क्या फर्क है आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है मेरा हाथ छूट भी जाए, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। देखो कितना अंतर है, क्योंकि वो तो बच्चा है ना, बच्चे का हाथ तो छूट भी सकता है। तो पिता तो चलो वो बच्चा हाथ पकड़ रहा है तो पिता का ध्यान छूट भी जाए और बच्चे का हाथ छूट जाए, पर बाप अगर पकड़ेगा तो तो वो तो टाइट पकड़ेगा ना, तो हमने बाबा का हाथ पकड़ा या बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है? तो वो बहन की मैं बात कर रही थी, तो वो बहन सदा कहती है मैंने नहीं हाथ पकड़ा है बाबा का, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। यानी कितना उसको नशा, यानी कि मैंने तो बाबा का हाथ पकड़ा है तो बाबा कभी मेरा हाथ छोड़ना नहीं, ये भी डर। बाबा मेरा हाथ छोड़ना नहीं का मतलब क्या है? हैं? कहीं छोड़ ना दे बाबा मेरा हाथ, बाबा छोड़ेगा क्या? लेकिन बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है तो वो तो कभी नहीं छोड़ेगा। मैं पकड़ू तो शायद मैं छोड़ भी दूं, क्योंकि अपने पर भी भरोसा नहीं है पर बाबा पर तो है ना। इसीलिए बड़ा अंतर है दोनों में। हमारी दादी जानकी तो बड़े नशे से कहती है मैं थोड़ी बाबा को याद करती हूँ, बाबा मुझे याद करता है, बाबा मुझे, बाबा संदेश देते हैं। बाबा दादी मांगती भी नहीं है, गुलजार दादी जाती है और बाबा से संदेश दादी के लिए लेकर के आती है। तो बाबा मुझे याद करता है, मैं करूं ना करूं बाबा करता है, ये कितना बड़ा नशा है। कई बार तो बाबा कहते मिठरा घुरत घुरे, ये सिंधी में आता है मिठरा घुरत घुरे, यानी तुम प्यार करो तो बाबा प्यार करे। लेकिन जब इतना प्यार हमने इतना लुटा दिया बाबा पर, बाकी मेरे पास कुछ है ही नहीं जिस जो मैं और प्यार करूं, तो फिर बाबा का पूरा प्यार हमारे ऊपर ही बरसता है, और किस पर बरसेगा। अब ये नशा हो तो बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। एक कदम भी, एक क्षण भी नहीं जो बाबा मुझसे अलग है। जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि काली, केवल ये नहीं कहो कि बाबा साथी है, लेकिन कंबाइंड है। साथी और कंबाइंड में बड़ा अंतर है, जुड़ा हुआ है। एक होता है साथी, साथ में जा रहे हैं, दूसरा होता है जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए तो अलग हो ही नहीं सकते, हो सकते अलग? हो सकते हैं। ऐसे बहुत हो के केसेस है दुनिया में, ऐसे दो लड़कियां थी एकदम सिर से जुड़ी हुई थी। अब अलग कैसे हो? अभी एक को सोना है दूसरे को सोना नहीं है, पर सोना ही पड़ेगा क्योंकि एक को सोना है क्योंकि जुड़ी हुई थी एकदम, सिर की जो नस थी ना वो एक ही थी दोनों की। तो अभी सोएंगे तो भी सब एक के साथ सोएंगे, जाएंगे तो भी एक ही साथ, खाना है तो भी एक साथ, पर दोनों के संस्कार अलग अलग। एक के अंदर थोड़े जोश के संस्कार थे, एक दूसरी वो शांत थी। अभी वो जोश करे पर दूसरी शांत रहे, बिल्कुल अलग अलग संस्कार। और आत्मा तो अलग अलग ही थी ना, तो संस्कार अलग। बच्चे दोनों जुड़वा बच्चे थे, बच्चियां थी। अब वो कहे हमको अलग होना, हमको अलग होना है। डॉक्टरों ने कहा अलग तुम होगे क्योंकि एक ही नस है, खून की ब्रेन की एक ही नस है, उनको अलग हम करेंगे तो बचेंगे नहीं। लेकिन बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। आखिर एक सिंगापुर का डॉक्टर था, ईरान की दो थी, सुना होगा पेपरों में बहुत आया था। तो आखिर वो डॉक्टर ने कहा हम कोशिश करेंगे, लेकिन लिखित में ले लिया कि अगर नहीं बचा सके दोनों को तो यानी हमारा दोष नहीं होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब उस प्रकार से। तो साइन ले लिया उन्होंने का, पर सचमुच वो क्या है, कोशिश उसने बहुत की, बहुत कुछ तैयारी की कि भाई कैसे वो ब्लड को मेंटेन किया जाए, ये किया जाए वो किया जाए, पर आखिर एक तो वो ऑपरेशन थिएटर पर ही मर गए और दूसरी थोड़ी देर के बाद मर गए। लेकिन डॉक्टर ने ले लिया था उनका, वो कि हमको नहीं तो मरना है, हमको ऐसे जीना नहीं है जो हम जुड़े हुए इस प्रकार रहे। वो हम सिंगापुर गए थे तो वो डॉक्टर मिला था हमको जिसने इसलिए वो उसने ज्यादा याद कराया। अखबार में तो पढ़ते थे, वो डॉक्टर बड़ा फेमस डॉक्टर है, सिंगापुर का डॉक्टर है जहां पर उन्होंने ऑपरेशन अपना कराया था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है उसका। तो यानी कहने का भाव है इस, तो हम भी बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, अलग होना है क्या ऑपरेशन करके? एक कदम भी बाबा से दूर नहीं, तो अर्थात संस्कार भी मैच होने चाहिए तभी तो जुड़ सकते ना। अगर संस्कार अलग अलग हैं तो जुड़ कैसे सकेंगे, परेशान हो जाएंगे। उन या तो हमको उनके अनुसार चलना पड़ेगा या उनको हमारे साथ चलना पड़ेगा। पर उन जिसको बाबा कहते कदम के पीछे कदम रखना, तो कदम के पीछे कदम रखने का मतलब है कि उनके हर कदम पर चलना, पर उसके लिए क्या करना होगा, पहले अपना अहम मारना होगा, अहम जिसको बाबा कहते ट्रस्टी बन जाओ, मैं नहीं बाबा। कोई आपकी महिमा करे तो भी उस महिमा को स्वीकार मत करो, किसी ने कोई विशेषता है कोई कला है तो बाबा क्या कहते हैं, वो किसने दी, बाबा ने दी, मेरी थोड़ी है, मेरे को थोड़ी पता था। तो इसीलिए ये तब महसूस होगा जब हम हर समय ये सोचेंगे मैं कौन मैं किसका। दादी जानकी बस यही सारा टाइम यही, मैं कौन मैं किसकी, मुझे क्या करना है, बस यही सोचती रहती है। इसलिए बेफिक्र बादशाह दादी जानकी, बिन कौड़ी बादशाह, लेकिन सारा जहान दादी को प्यार करता। अभी विदेश वाले कहीं हम आए, हमारी दादी ने मना किया किसी को मत आना। जयंती बहन ने कल बताया होगा ना, जयंती को भी दादी ने कहा जाओ जाओ लंदन, जाओ वापस जाओ, बहुत कारोबार है बहुत काम है, सब छोड़ करके तुम यहाँ बैठ गई हो। जयंती ने कल सुनाया समाचार, कुछ नहीं सुनाया क्या, खाली क्लास करा है। हाँ दादी जानकी का कुछ सुनाया, सुनाया हाँ थोड़ा बहुत सुनाया, लेकिन ये दादी की विशेषता है, बिल्कुल एक सेकंड में सबको प्यार करेगी, फिर कहेगी कोई भी मुझे याद नहीं करे, मैं किसी को भी याद नहीं करूँ बाबा। सब इतने ईमेल्स दादी को आते हैं, बात मत पूछो, पढ़ती भी है दादी, जवाब भी कहती है दो इनको। बाबा भी ऐसे कहते, एक पत्र बाबा कभी छोड़ा नहीं, अंतिम दिन भी बाबा ने सबको पत्र लिखे, एक कोई एक पत्र भी नहीं छोड़ा। सवेरे 10 बजे बाबा ने पत्र लिखे, फिर दोपहर को बाबा 4 बजे आए, फिर भी ईशु दादी को कहा, शनिवार का दिन था, ईशु दादी से पूछा कोई और पत्र आए, यहाँ बाबा आए हैं, बाबा कोई बात नहीं शनिवार है आज, कल संडे है कल जवाब देंगे। बाबा ने कहा नहीं आज ही देने, आज ही देने। और कैसे बाबा 6 बजे तक पत्र पूरे किए पूरे किए, वो उन आत्माओं को कितनी खुशी होगी ये अंतिम दिन बाबा ने ये मुझे पत्र लिखा है। आए कई बताते थे कि बाबा ने 18 जनवरी के दिन मुझे पत्र लिखा था, तो बाबा भी बहुत याद करते थे। लेकिन फिर देखो बाबा एकदम न्यारा, न विसरो न याद रहो, बाबा कहते थे न विसरो न याद रहो, किसी को भी याद नहीं करना है, बस एक बाबा उस बिंदु में सिंधु को देखो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो देखो बेफिक्र बादशाह हो, बाबा के कदम के पीछे कदम रखना है, बाबा के श्रीमत अनुसार चलना है, उसमें आत्मा का कल्याण समझ करके आगे बढ़ना है। वो छत्र छाया मेरे सिर पर है, ये नहीं कि छत्र छाया माना कि हम कभी शरीर ही नहीं छोड़ेंगे, बाबा रक्षक बनेगा, शरीर छोड़ेंगे एक सेकंड में पता भी नहीं चलेगा, वो और अच्छा है। तड़प तड़प करके त्याग करना शरीर, कष्ट भोग भोग करके, वो कोई शरीर छोड़ना थोड़ी है, परंतु एक सेकंड, तब कहेंगे मक्खन से बाल, जैसे मक्खन में बाल होता है ना, कैसे निकलता है बाल, न सहज, और रोटी में बाल पड़ जाए तो हाँ? वो भी सहज नहीं निकलता, रोटी में वो टुकड़े टुकड़े होकर के निकलता है, और मक्खन में पड़ गया अगर भूल से तो एक सेकंड। तो ऐसे ही मक्खन से बाल निक, हम आत्मा अशरीरी बन जाए, बस यही अभ्यास करो, तब उड़ती कला का अनुभव होगा। और फरिश्ता बनना है तो सेवा, हर कदम में सेवा की भावना भरियो, सबकी दुआएं जमाओ, तो बेफिक्र बादशाह बनेंगे। बड़ी दादी जी से हम पूछते थे, दादी जी आप पुरुषार्थ क्या करती हो, क्या पुरुषार्थ आप दादी करते हैं, दादी कहते मैं कोई पुरुषार्थ नहीं करती हूँ। तुम कहने का दादी आप पुरुषार्थ कुछ नहीं करते, मैं तो कुछ भी नहीं करती, इतनी हल्की रहती थी दादी जैसे कुछ है ही नहीं। हमारी सविता डॉक्टर और अच्छा बता सके, क्योंकि दादी की डॉक्टर थी, बड़ी दादी की डॉक्टर। हाँ ये लोग कह रहे हमको बाबा मम्मा की बातें बता भी आएंगे ना, पर आप भी सुनाओ दादी जी का अनुभव। आपका क्लास रखा है कल, हाँ भाई इनसे जरूर पूछना, ये बहुत खजाने भरे हुए हैं इनके अंदर भी। और कैसे तो हमने कहा दादी आप पुरुषार्थ नहीं करते, दादी कहती है मैं तो अब सबकी दुआओं से चल रही हूँ। कितना सुंदर जवाब, सबकी दुआओं से चल रही हूँ, पर दुआएं ही मुझे उड़ा रही है, ये दादी के शब्द थे। तो दुआओं से उड़े तो बाकी मेहनत थोड़ी है, पुरुषात्मा ना कोई मेहनत नहीं, दुआएं चला रही है। दवा तो चलो 5% 10%, बाकी 90% दुआएं। दादी जानकी को भी ऐसे ही दुआएं चला रही, इसलिए कोई चिंता नहीं। अभी परसों दादी का लेटर आया, दादी ने, मोहिनी बहन है ना अपनी मधुबन की, मोहिनी बहन, मोहिनी बहन को कहती है दादी कि देखो, क्योंकि बहुत आई हो गई, अभी डॉक्टर ने कहा ज्यादा बहुत लोगों के सामने मत जाओ क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए बस थोड़े थोड़े आपके पास आए, बस उनसे भले मिलो, परंतु हजारों की भीड़ में नहीं जाओ, इसलिए हॉल में नहीं जाओ, बस यहीं बैठो। तो दादी मोहिनी बहन को कहती है, मोहिनी बहन मैं तो अभी कुछ सेवा नहीं कर पा रही हूँ, यानी इतना नहीं ना। तो मोहिनी बहन ने बहुत सुंदर जवाब दिया, दादी बस आपको भी सकाश देनी है, यही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा भी तो कहते हैं ना, भाषण नहीं लेकिन भासना, भासना। और सचमुच दादी के पास जो जाए भरपूर होकर के आता है, ऐसे दादी इतने सुंदर वरदान दे देगी और कहेगी ये दो, ये लो, ये लो, ये लो, टोली लाओ, फल लाओ, ये लाओ, वरदान वो लाओ, वो भरपूर करके भेज देगी। आत्मा गई एकदम तृप्त होकर के आई दो मिनट में, जैसे हम बाप दादा को देखते हैं, बस बाबा के सामने गए, दृष्टि बाबा की मिली, एक वरदान मिला, जैसे जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। बाबा की मुरली से भी हम अव्यक्त मुरलियों से अनुभव कर सकते ऐसे वरदान, तो फिकर किस बात का, इतने वरदानों से भरे हुए, रोज भगवान इतने वरदान देते हैं। हम लोग तो जाते थे साधु संत महात्माओं के पास, कुछ आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, हाँ कुछ हाथ रखो, दुआ करो। अभी तो बाबा कहते तुमको देना है औरों को, इतने भरपूर हो जाओ, क्योंकि अंत के समय ऐसा आएगा जो आपको देना ही होगा, लेने का कभी नहीं सोचना। तो इतने भरपूर अभी बने, इसलिए आप भट्टी में आयो चार दिन और सब बातों से दूर, आत्मा इतना भरपूर होकर के जाए। हो ना, भरपूर हो रहे हो ना, हो रहे हो। हाँ, तो आप लास्ट में आज बाबा आज भी बताए ना, कुछ भी कमियां है, कुछ भी है, बाबा के कमरे में रख कर आ जाओ, झोपड़ी में रख के आ जाओ, लेटर टू बाबा उसमें डब्बा है, कुछ भी है लिख करके, लेटर बाबा को लेटर लिख करके उसमें डाल के आओ। अफ्रीका में ये प्रयोग चल रहा है, बाहर वालों को भी कहते हैं आप भगवान को एक पत्र लिखो, इतना सफल हुआ है ये प्रोजेक्ट, बात मत पूछो, भगवान को पत्र। कभी सोचा था भगवान को भी पत्र लिख सकते हैं, एड्रेस क्या है पता ही नहीं ना भगवान को लिखे भी तो, लेकिन आपकी आप लिखो, आपका भगवान को लेटर पहुंच जाएगा, ख्याल मत करो, और सचमुच हल्के हो जाओ तो बाबा बेफिक्र बादशाह वैसे भी बना देगा। बाबा पर चिंता, चिंता बाबा को दे दो, इसलिए वो एक चित्र है ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, तो इसीलिए बाबा है, वो हमारी सब चिंताएं दूर करने के लिए आया है। बाबा कहते मुझे यूज करो, कुछ भी ऐसी बात है बाबा को दो, बाबा आप संभालो। आप खुद पकड़ के रखेंगे, फिर कहेंगे बाबा करो, तो बाबा कहेगा पहले तो खुद तो हटाओ, खुद तो छोड़ो पहले, तो बाबा करे ना। एक पंछी डाली को पकड़ के रखता, फिर कहता मैं उड़ू, मैं उड़ू, कैसे उड़ेगा, डाली छोड़ो ना, छोड़ो तो छोटो, बाबा को दो तो देखो बेफिक्र बादशाह बन गए। बाबा आपको ऐसे सहज करके देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ये बात हल हो गई, पर बाबा को देना आना चाहिए, हल्का होना आना चाहिए। हो सकेंगे ना माताएं, माताएं और कोई आश है क्या इस दुनिया की, कोई आश है क्या, तो फिर काय की चिंता, जो समझते हम है ही बेफिक्र बादशाह, कोई चिंता नहीं, हाथ उठाओ, सच्चा सच्चा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सचमुच। अच्छा, टीचरों को भी चिंता नहीं है, स्टूडेंट्स आए नहीं आए चिंता नहीं होती है, सेवा है नहीं है जी, होती है, तो फिर वो शुद्ध चिंता है। अच्छा, चिंता भी शुद्ध होती है क्या, चलो कोई बात नहीं, पर सचमुच बाबा ने हमें, हमको कई लोग पूछते हैं कि बहन जी आप सदा आप मुस्कुराते हो, सदा हंसते रहते हो, सदा हल्के रहते हो। हम कहते हैं अरे बड़ों की दुआएं हमारे सिर पर, वो दुआएं ही हमको भी चला रही है। दादी जी को हमने कैसे कॉपी किया, हाँ सचमुच कैसे दुआएं चलाते और हल्के रहते, हल्के रहो और दुआएं मिलती रहे, सेवा भी होती रहती है। जितनी वाणी से सेवा नहीं होगी उतनी आपकी हर्षित चेहरे से सेवा होगी, आपकी खुशी से जो आपके अंदर जो खुशी है वो सेवा ज्यादा करेगा। तो ऐसे ही खुशी में रहो, खुश करो, खुश रहो और खुश करो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ, ठीक है। यहाँ से ये वरदान लेके जाना मधुबन से। ओम शांति, ओम शांति। अभी क्या आइसक्रीम मिलने वाली है?
हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहे।